पृष्ठ संख्या 199 त्रयोदश अध्याय कांट के आलोचनात्मक विज्ञानवाद का 6वां भाग। अब हम कांट की संवेदन परीक्षा और बुद्धि विकल्प परीक्षा के बाद उनकी प्रज्ञा परीक्षा का निरूपण करते हैं। इसका विवेचन किया जा चुका है कि कांट के अनुसार हमें केवल व्यवहार का ही सत्य और निश्चित ज्ञान होता है, परमार्थ का नहीं। ज्ञान के लिए इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प दोनों आवश्यक है। गणित शास्त्र में देश काल के कारण और भौतिक विज्ञानों तथा व्यवहारिक दर्शन शास्त्र में बुद्धि विकल्पों के कारण सत्य एवं निश्चित ज्ञान संभव है, क्योंकि यहाँ तक इंद्रिय संवेदनों की पहुँच है। व्यवहारिक दर्शन शास्त्र से कांट का तात्पर्य ज्ञान मीमांसा से है। दर्शन का मुख्य कार्य ज्ञान मीमांसा अर्थात हमारे ज्ञान की उत्पत्ति, प्रामाण्य और सीमा का निर्धारण करना है। इस कार्य में दर्शन सफल होता है। दर्शन शास्त्र का पारमार्थिक पक्ष है तत्व मीमांसा अर्थात ईश्वर, जीव और जगत का विवेचन। अब प्रश्न यह है कि क्या तत्व मीमांसा में भी सत्य और निश्चित ज्ञान संभव है? कांट का स्पष्ट उत्तर है नहीं। दर्शन शास्त्र के ये तत्व अतींद्रिय हैं। अतींद्रिय होने के कारण इंद्रिय संवेदनों की पहुँच इन तत्वों तक नहीं है। इंद्रिय संवेदनों के अभाव में बुद्ध विकल्पों को एकीकरण और समन्वय के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती, अतः बुद्ध विकल्पों की गति भी इन तत्वों तक नहीं है। जब इंद्रिय संवेदन ही प्रस्तुत नहीं होते तो बुद्ध विकल्प ज्ञान का स्वरूप किस वस्तु को दें? अतः इंद्रिय संवेदन और बुद्ध विकल्प के अभाव में इन तत्वों का हमें कोई सत्य और निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। फलतः तत्वमीमांसा के अर्थ में दर्शन शास्त्र अप्रामाणिक है। अब प्रश्न यह है कि यदि ऐसा है तो फिर तत्वमीमांसा की ओर हमारी प्रवृत्ति ही क्यों होती है और इसका प्रयोजन ही क्या है? कांट का उत्तर है कि यह एक रहस्य है। मानव के भीतर एक अनंत जिज्ञासा है। इंद्रिय अनुभूति और बुद्ध की सीमा का अतिक्रमण करने की एक प्रबल व्याकुलता है। सीमित से असीम की ओर, शांत से अनंत की ओर, अनित्य से नित्य की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर जाने की एक उत्कट इच्छा है। पृष्ठ संख्या 200। इंद्रिय अनुभव और बुद्ध विकल्प के बंधनों को तोड़ फेंकने की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति या जिज्ञासा के कारण ही तत्वमीमांसा की ओर मानव अग्रसर होता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, किंतु फिर भी सत्य यही है कि इन अतींद्रिय तत्वों का हमें कोई सत्य और निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तत्वमीमांसा इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्पों के अभाव के कारण सत्य एवं निश्चित ज्ञान नहीं दे सकती। तत्वमीमांसा का सारा ज्ञान संभावना मात्र है। कांट ने बुद्धि या अंडरस्टैंडिंग और प्रज्ञा या रीजन में महत्वपूर्ण भेद किया है। बुद्धि अपने विकल्पों द्वारा संवेदनों का एकीकरण करके उनको ज्ञान का रूप देती है। हमारे व्यवहारिक ज्ञान में सार्वभौम निश्चय और अनिवार्यता बुद्धि के कारण ही आती है। बुद्धि प्रकृति को नियमित करके उसे हमारे ज्ञान का विषय बनाती है। बुद्धि का कार्य इंद्रियों द्वारा प्रस्तुत संवेदन सामग्री को ज्ञान के रूप में परिणत करना है। बुद्धि के अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित होते हैं। बुद्धि जिन वस्तुओं का ज्ञान करती है उनके मूल रूप वस्तु जगत में विद्यमान होते हैं। बुद्धि के नियम वस्तु जगत पर लागू होते हैं। वे प्रकृति का निर्माण करते हैं। प्रज्ञा के उपादान रूप नियम या कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स हैं। प्रज्ञा का कार्य भी एकीकरण और समन्वय है। प्रज्ञा बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि इंद्रिय संवेदनों को नियमित करके उन्हें अनुभव का रूप देती है। प्रज्ञा बुद्धि के विभिन्न अनुभवों का एकीकरण करके उनको नियमित करती है। प्रज्ञा का इंद्रिय संवेदनों से कोई संपर्क नहीं। प्रज्ञा का क्षेत्र बुद्धि है, अतः प्रज्ञा के अनुमान परोक्ष होते हैं, अर्थात बुद्धि के अनुमानों के समान प्रज्ञा के अनुमान प्रत्यक्ष मूलक नहीं होते। बुद्धि जिन नियमों के आधार पर संवेदनों का समन्वय करती है, प्रज्ञा उन नियमों का समन्वय करती है। प्रज्ञा के सिद्धांत वस्तु जगत पर लागू नहीं होते, क्योंकि प्रज्ञा का इंद्रिय संवेदनों से कोई संपर्क नहीं। प्रज्ञा से जिनका ज्ञान होता है उनके संवादी मूल रूप वस्तु जगत में नहीं होते, अतः यह ज्ञान यथार्थ नहीं होता। प्रज्ञा के नियम केवल नियामक या रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। बुद्ध नियमों के समान उपादान रूप नहीं। तत्वमीमांसा के अतींद्रिय तत्वों का ज्ञान हमें प्रज्ञा के द्वारा होता है, बुद्ध के द्वारा नहीं। प्रज्ञा से उत्पन्न होने के कारण यह ज्ञान यथार्थ या सत्य नहीं हो सकता। प्रज्ञा द्वारा ज्ञात तत्व प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष मूलक अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकते। इन तत्वों को कोई इंद्रिय संवेदन नहीं होता। पृष्ठ संख्या 201। अतः इनके मूल रूप परमार्थ वस्तु जगत में हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। इंद्रिय संवेदन के अभाव में और बुद्ध विकल्पों के अभाव में प्रज्ञा द्वारा ज्ञात तत्वों को सत्य और निश्चित नहीं कह सकते। ये संभावना मात्र हैं। ये हमारी प्रज्ञा की कल्पना मात्र है। इनका हमें कभी प्रत्यक्ष निष्ठ ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रिय गोचर और बुद्धिगम्य नहीं होने से इन तत्वों के सत्यत्व के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता और न इनको बुद्धि से सिद्ध किया जा सकता। बुद्धि के विकल्प इन पर लागू नहीं होते, और जब प्रज्ञा बलात् बुद्धि को अपने विकल्पों के इन तत्वों पर फेंकने के लिए बाध्य करती है, तो बुद्ध विकल्प इन तत्वों से टकराकर वापस चले आते हैं। फलतः द्वंद्वों की सृष्टि होती है, अर्थात प्रज्ञा द्वारा इनके विषय में परस्पर विरोधी पक्ष और विपक्ष की कल्पना की जाती है, और दोनों में तुल्य बल होने से किसी की भी स्थापना नहीं हो सकती। इस प्रकार कांट के अनुसार हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदनों में उदित होकर देश काल के द्वारों से बुद्ध विकल्पों तक पहुँचता है और अंत में प्रज्ञा में जाकर समाप्त हो जाता है। प्रज्ञा द्वारा ज्ञान तत्व हमारी कल्पना मात्र है, और इनके आधार पर तत्व मीमांसा की सत्य एवं निश्चित ज्ञान के रूप में कभी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। प्रज्ञा के जगत जीव और ईश्वर रूपी तत्व त्रय के आधार पर तीन शास्त्रों की स्थापना की गई है। जगत की विराट प्रकृति के रूप में सत्ता सिद्ध करने के लिए सृष्टि विज्ञान या रेशनल कॉस्मोलॉजी की स्थापना जीवात्मा को अमर चेतन तत्व सिद्ध करने के लिए आत्मनिष्ठ मनोविज्ञान या रेशनल साइकोलॉजी की स्थापना, और ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए धर्मशास्त्र या रेशनल थियोलॉजी की स्थापना मानव मस्तिष्क ने की है। किंतु जगत जीव और ईश्वर ये तीनों प्रज्ञा के काल्पनिक विज्ञान मात्र हैं। इनको वस्तु सत्य के रूप में सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंद्रिय गोचर और बुद्धि गम्य नहीं है। अतः इनके संबंध में द्वंद्वात्मक तर्क या डायलेक्टिक की सृष्टि होती है, जो वस्तुतः भ्रांति मात्र या लॉजिक ऑफ द फॉल्स शो हैं। ये तत्व वस्तुतः अव्याकृत या अननोनेबल हैं, और इनको व्याकृत करने की चेष्टा में परस्पर विरुद्ध पक्ष विपक्ष की सृष्टि होती है, और दोनों के तुल्य बल होने के कारण किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। ये तीनों शास्त्र विरोधों के दलदल में बुरी तरह फंसे हैं। सृष्टि विज्ञान के विरोध को कांट ने एंटीनोमिज, आत्मनिष्ठ मनोविज्ञान के विरोधों को पैरालॉगिज्म, और धर्मशास्त्र के विरोधों को कंट्राडिक्शंस के नाम दिए हैं। तीनों का अर्थ एक ही है, अर्थात परस्पर विरोधी तर्क। पृष्ठ संख्या 202। पहले सृष्टि विज्ञान के विरोधों पर विचार करें। सृष्टि की प्रकृति या विराट समस्त के एक समन्वयात्मक रूप में कल्पना करना प्रज्ञा के लिए स्वाभाविक है, किंतु है वह कल्पना मात्र। जब इस कल्पना को एक सत्य वस्तु मान लिया जाता है, तब विरोधों का जन्म होने लगता है। यह समस्या प्रज्ञा के लिए स्वाभाविक समस्या है, किंतु इसका समाधान करने में वह असमर्थ है। सृष्टि विज्ञान में कांट ने चार विरोध बताए हैं। प्रत्येक विरोध के अंतर्गत दो कल्पनाएं आती हैं, जिनमें एक पक्ष है और दूसरा प्रतिपक्ष, और ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। बुद्धि की गति इन कल्पनाओं तक नहीं है, वह इनको न तो सिद्ध कर सकती है और न असिद्ध, किंतु प्रज्ञा इन दोनों कल्पनाओं को या तो सिद्ध कर सकती है या असिद्ध। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के तर्क तुल्य बल हैं, इनमें से किसी को भी स्वीकार करना विरोध को आमंत्रित करना है। सृष्टि विज्ञान के चार विरोध निम्नलिखित हैं। पहला, प्रथम विरोध के अंतर्गत क पक्ष, सृष्टि देश और काल में साध और शांत है, अर्थात सृष्टि का आरंभ काल में हुआ है और वह देश से परिच्छिन्न है। ख प्रतिपक्ष, सृष्टि देश और काल से परिच्छिन्न नहीं है, वह अनादि और अनंत है। दूसरा, द्वितीय विरोध क पक्ष, सृष्टि के परम तत्व अविभाज्य परमाणु हैं। ख प्रतिपक्ष, सृष्टि अविभाज्य परमाणुओं से नहीं बनी है। तीसरा, तृतीय विरोध के अंतर्गत क पक्ष, सृष्टि का विकास स्वतंत्र संकल्प वाले जीवों के स्व उद्देश्य विकास के लिए है। ख प्रतिपक्ष, सृष्टि यांत्रिक कार्य कारण भाव से बधी है। चतुर्थ विरोध क पक्ष, सृष्टि का कारण कोई निरपेक्ष तत्व है। ख प्रतिपक्ष, सृष्टि का कोई ऐसा कारण नहीं है। इन चार विरोधों में प्रथम और द्वितीय विरोध के पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों असिद्ध किए जा सकते हैं और तृतीय तथा चतुर्थ विरोध के पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सिद्ध किए जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 203। तृतीय और चतुर्थ विरोधों के पक्ष नैतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सृष्टि स्वतंत्र संकल्प वाले जीवों के स्वदेश विकास के लिए और सृष्टि का मूल कारण परमात्मा है। ये सिद्धांत नैतिक और धार्मिक दृष्टि वाले दर्शनों को मान्य है। बिना संकल्प स्वातंत्र के कर्मवाद और नैतिकता एवं बिना परमात्मा के धर्म संभव नहीं है, किंतु भौतिक विज्ञानों का झुकाव इनके प्रतिपक्षों की ओर है। वे सृष्टि में यांत्रिक कार्य कारण भाव मानते हैं और किसी परम तत्व को सृष्टा के रूप में स्वीकार नहीं करते। संभव है कि बाह्य प्रकृति में यांत्रिक कार्य कारण भाव का साम्राज्य हो और इसका कोई सृष्टा न हो। संभव है कि नैतिक जीवन में आत्मा की स्वतंत्र संकल्प शक्ति हो और धर्म में परमात्मा की सत्ता हो। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही हमारी प्रज्ञा की कल्पना मात्र है, इनके लिए लड़ना व्यर्थ है। कांट ने कहा है, पक्ष और प्रतिपक्ष के इस युद्ध क्षेत्र में विजय उसकी होती है जो आक्रमण करता है, और उसको पीछे हटना पड़ता है जो रक्षार्थ लड़ता है। इस युद्ध में एक दूसरे को घायल करने की अपेक्षा ये दल एक दूसरे को थकाते अधिक हैं। जब दोनों दल थक कर चूर हो जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि ये व्यर्थ लड़ रहे थे, और तब ये आपस में मित्र बनकर अलग हो जाएंगे। अब आत्मनिष्ठ मनोविज्ञान के विरोधों पर दृष्टिपात करना चाहिए। प्राचीन मनोविज्ञान आत्मा को एक अमर नित्य और चेतन द्रव्य के रूप में स्वीकार करता है, किंतु इसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। जो स्वसंवेदन का विषय बनता है वह शुद्ध आत्मा नहीं है, वह तो व्यवहारिक जीव है जो हमारे संवेदनों और विज्ञानों का पुंज मात्र है। यह सत्य है कि विशुद्ध ज्ञाता के बिना किसी प्रकार का ज्ञान या अनुभव नहीं हो सकता, किंतु इस ज्ञाता को द्रव्य या सब्सटेंस के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं। यह विशुद्ध ज्ञाता केवल विषयी या सब्जेक्ट है, यह कदापि विषय नहीं बन सकता। यह अद्वय अतींद्रिय विशुद्ध अपरोक्ष अनुभूत रूप है। इसका न तो इंद्रिय संवेदन से प्रत्यक्ष हो सकता है और न बुद्ध विकल्पों से ज्ञान। बुद्ध विकल्प स्वयं इस पर निर्भर हैं, अतः वे इस पर लागू नहीं होते। इस पर एकता द्रव्य आदि के विकल्प थोपना उचित नहीं। अतः मनोविज्ञान अपने कल्पित जीव को अमर और चेतन द्रव्य मानकर विरोधों में फंस रहा है। इसी प्रकार धर्मशास्त्र के भी विरोध हैं। विद्वानों ने ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण दिए हैं, किंतु ईश्वर भी हमारी प्रज्ञा की ही कल्पना है। पृष्ठ संख्या 204। वस्तुतः ईश्वर की सत्ता प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। कांट ने ईश्वर की सिद्धि के प्रमाणों को तीन प्रकार माना है। प्रथम है प्रयोजन मूलक तर्क, जिसके अनुसार सृष्टि एक निश्चित प्रयोजन या लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और यह प्रयोजन चेतन सत्ता द्वारा ही संभव है, अतः ईश्वर है। सृष्टि में समन्वय और वैश्य रूप है। एक साधारण घड़ी बनाने के लिए भी चेतन घड़ी साज की आवश्यकता होती है। ईंट चूना पत्थर आदि स्वयं मकान के रूप में परिणत नहीं हो सकता। मकान बनाने के लिए भी कुशल चेतन कारीगरों की आवश्यकता होती है, तब इस विशाल सृष्टि के निर्माण के लिए जिसमें आश्चर्यजनक समन्वय और प्रयोजन निहित है, एक चेतन परमात्मा की सत्ता अनिवार्य है। कांट ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा है कि यह तर्क अधिक से अधिक सृष्टि के एक निमित्त कारण को सिद्ध कर सकता है, सृष्टा ईश्वर को नहीं। इससे अधिक से अधिक यही सिद्ध हो सकता है कि सृष्टि में एक निश्चित उद्देश्य या प्रयोजन है जो किसी चेतन सत्ता से आया है। इससे जगत के उपादान कारण की या सृष्टिकर्ता ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। द्वितीय तर्क है कार्य कारण भाव मूलक। जिससे यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि यह सृष्टि कार्य है, सीमित है, शांत है, परिणामी है और इसलिए इसके असीम अनंत और अपरिणामी कारण की आवश्यकता है जो ईश्वर है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। यह सृष्टि भी कार्य है, अतः इसका भी कारण होना चाहिए और अनवस्था दोष को दूर रखने के लिए इस कारण को स्वयंभू मानना चाहिए। हम शांत से अनंत की ओर, सीमित से असीम की ओर और कार्य से कारण की ओर जाते हैं। यह स्वयंभू कारण अनादि और अनंत ईश्वर के अतिरिक्त और नहीं हो सकता। कांट ने इस तर्क का खंडन करते हुए कहा है कि कार्य कारण भाव तो हमारे व्यवहारिक जगत का संबंध है, यह हमारी बुद्धि का एक विकल्प है। इस बुद्धि विकल्प को परमार्थ पर लागू करना उचित नहीं। इस तर्क से अधिक यही सिद्ध हो सकता है कि सृष्टि का कोई कारण है। यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वह कारण ईश्वर ही है। तृतीय तर्क है सत्ता मूलक, जिससे यह सिद्ध किया जाता है कि ईश्वर की पूर्णता के विचार मात्र से ही उनकी सत्ता भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यदि ईश्वर की सत्ता न होती तो वे अपूर्ण होते और अपूर्ण ईश्वर की कल्पना में विरोध है। इस तर्क का प्रयोग पहले संत एंसेल्म ने किया था और डेकार्त ने भी इसे अपनाया था। एंसेल्म के समकालीन गैलीलियो ने इसका खंडन कर दिया था कि इससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती। केवल ईश्वर की सत्ता का विचार सिद्ध होता है। पृष्ठ संख्या 205। हमें पूर्ण ईश्वर का विचार होता है और इस विचार से यही सिद्ध होता है कि यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसकी सत्ता भी होनी चाहिए। इससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती। कांट ने भी गैलीलियो के खंडन को स्वीकार किया है। ईश्वर को पूर्णता के विचार से केवल ईश्वर की सत्ता का विचार सिद्ध होता है, उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। यदि कोई विचार करे कि उसके पास 100 रुपए हैं तो इस विचार मात्र से उसकी जेब में 100 रुपए नहीं आ जाते। यदि किसी के पास 100 रुपए हो और वह हिसाब में 1 शून्य और बढ़ाकर 100 के स्थान पर 1000 बना दे तो उससे वास्तविक संपत्ति में वृद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार कांट ने यह सिद्ध किया कि तर्कों के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती। ईश्वर, जीव और जगत ये हमारी प्रज्ञा की कल्पना मात्र है। इनको वस्तु सत्य के रूप में सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारा सत्य और निश्चित ज्ञान व्यवहार तक ही सीमित है। ये अतिंद्रिय है, अतः इंद्रिय गोचर और बुद्धिगम्य नहीं। इस प्रकार कांट ने दार्शनिक रीति से यह सिद्ध किया कि तत्वमीमांसा के अर्थ में दर्शन शास्त्र असंभव है। किंतु साथ ही साथ कांट ने साग्रह यह भी कहा कि यदि प्रज्ञा इन तत्वों को सिद्ध नहीं कर सकती तो वह इन्हें असिद्ध भी नहीं कर सकती। ईश्वर संकल्प स्वातंत्र, आत्मा की अमरता आदि सिद्धांत नैतिक और धार्मिक जीवन के आधार स्तंभ हैं, किंतु ये श्रद्धा या विश्वास के विषय हैं, तर्क या बुद्धि के नहीं। प्रज्ञा इनको सिद्ध नहीं कर सकती। कांट का स्वयं इन पर विश्वास था और उनका जीवन पूर्ण नैतिक एवं धार्मिक था। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शुद्ध ज्ञान की परीक्षा को समाप्त करते हुए कांट ने यह लिखा है, श्रद्धा को लाने के लिए मुझे प्रज्ञा को समाप्त करना पड़ा। जिसे बुद्धि सिद्ध नहीं कर सकती उसे श्रद्धा सिद्ध करती है। जिसका प्रतिपादन शुद्ध ज्ञान नहीं कर सका उसकी प्रतिष्ठा आचार मूलक ज्ञान ने की है। कांट ने अपने दूसरे प्रसिद्ध आचार मूलक ज्ञान की परीक्षा में ईश्वर, जीव और जगत तीनों तत्वों को श्रद्धा के कारण स्थापित किया है। मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति में स्वतंत्र है और इसीलिए कर्म करने और शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने में भी स्वतंत्र है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। कांट का नैतिक नियम है, कर्तव्य समझ कर ही निष्काम भाव से कार्य करना। पृष्ठ संख्या 206। यह नियम गीता के निष्काम कर्म योग से बहुत कुछ मिलता है। नैतिक नियम का आदेश, अनिवार्य आदेश या कैटेगोरिकल इम्परेटिव है, प्रभु सम्मत आदेश है, जिसका अतिक्रमण कोई मनुष्य मनुष्य रहकर नहीं कर सकता। आत्मा की अमरता और ईश्वर की आवश्यकता नैतिक जीवन के लिए अनिवार्य है। नैतिक जीवन का लक्ष्य परम कल्याण या हाईएस्ट गुड की भावना है, जो महत्तम पुण्य और महत्तम सुख का समन्वय है। ज्ञान के लिए तो कांट ने इंद्रिय संवेदनों को आवश्यक सामग्री माना है, किंतु नैतिक जीवन के लिए इंद्रिय जीत होना आवश्यक समझा है। नैतिक जीवन में इंद्रियां सहायक होने की अपेक्षा बाधक अधिक हैं। इंद्रियों की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति पाना चीरकालीन साधना द्वारा शक्य हो सकता है। मनुष्य को वासनाओं से जितनी मुक्ति मिलती है उतना ही वह परम कल्याण की ओर अग्रसर होता है। यह कांट के दर्शन का संक्षिप्त परिचय है। कांट की गणना यूरोप के महत्तम दार्शनिकों में है। इंद्रियों का संवेदन के रूप में ज्ञान की सामग्री उपस्थित करना देश काल के द्वारों से इस सामग्री का निकलना और फिर बुद्ध विकल्पों के सांचों में ढलकर सार्वभौम एवं निश्चित ज्ञान के रूप में परिणत होना बुद्ध की ज्योति और शक्ति का विशुद्ध ज्ञाता से आना विशुद्ध ज्ञाता को स्वतः सिद्ध अनिर्वचनीय अद्वय अपरोक्षानुभूति रूप मानना और उसे समस्त ज्ञान या अनुभव का एकमात्र अधिष्ठान स्वीकार करना, जीवों और जगत की केवल व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करना, इंद्रिय संवेदनों और बुद्धि विकल्पों की अतिंद्रिय और बुद्धि द्वारा अगम्य परमार्थ तक गति न मानना आदि सिद्धांत कांट के महत्ता के सूचक हैं। किंतु संवेदनों को अनेक अज्ञेय जड़ बाह्य परमार्थों द्वारा प्रसूत मानना, विशुद्ध ज्ञान को भी संवेदन सापेक्ष मानना, संवेदनों के अभाव में विशुद्ध ज्ञाता तक को बेकार बना देना, विशुद्ध ज्ञाता का अज्ञेय बाह्य पदार्थों के साथ कोई संबंध स्थापित न करना, व्यवहार और परमार्थ के द्वैत को पारमार्थिक बना देना, बुद्ध विकल्पों को केवल सांचों का रूप देना और संवेदनों के अभाव में उनको निष्क्रिय मानना आदि दोष कांट के दर्शन में रह गए हैं, जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हो पाया है। कांट की सबसे बड़ी भूल विशुद्ध ज्ञाता को भी इंद्रिय संवेदनों की श्रृंखला में बांध देना है। इंद्रिय संवेदनों के अभाव में विशुद्ध ज्ञाता भी कुछ नहीं कर सकता। कांट ने प्रज्ञा के साथ अन्याय किया है। प्रज्ञा को विशुद्ध ज्ञाता का स्वरूप न मानकर उसे केवल नियामक मानना अनुचित है। पृष्ठ संख्या 207। इसीलिए बुद्ध विकल्प भी कोरे सांचे ही रह गए हैं, मानो ये बुद्ध विकल्प जगत के विभिन्न गोदामों के, जिनमें अनुभव का संवेदन रूपी कच्चा माल बंद है, तालों को खोलने की कुंजियां मात्र हैं। जगत के जड़ पदार्थों को संवेदन उत्थापित करने वाले परमार्थ मानना भूल है। कांट का यह अज्ञेय बाह्य परमार्थ लाभ के अज्ञेय बाह्य पदार्थ का, जिसे बर्कले ने बुद्धि शून्य जड़ कहकर उपहासास्पद और असंभव सिद्ध किया था, परिवर्धित और संशोधित संस्करण मात्र है। यदि बाह्य परमार्थ वस्तुतः अज्ञेय है तो उनका ज्ञान संवेदन उत्पन्न करने वाले जड़ पदार्थों के रूप में किस प्रकार हो सकता है? यह कैसे कहा जा सकता है कि संवेदनों के मूल स्वरूप ये बाह्य अज्ञेय परमार्थ है? बिंब के ज्ञान के अभाव में प्रतिबिंब का ज्ञान कैसे हो सकता है? कांट ने बर्कले के अकाट्य तर्कों की पूर्ण उपेक्षा की है। केवल विशुद्ध ज्ञाता ही अद्वैय परमार्थ हो सकता है, अन्य सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है। कांट ने विशुद्ध ज्ञाता के स्वरूप को तो समझा, किंतु उसे इंद्रिय संवेदनों के साथ नत्थी करके भारी भूल की। संवेदन भी वस्तुतः प्रज्ञा के ही क्षीण रूप हैं। इसे न मानने के कारण व्यवहार और परमार्थ का द्वैत भी पारमार्थिक हो गया है, जो महा अनर्थकारी है। प्रज्ञा केवल नियामक ही नहीं, उपादान रूप भी है। प्रज्ञा विशुद्ध ज्ञाता का स्वरूप है और जीव तथा जगत दोनों उसी की अभिव्यक्ति है। कांट ने इसे न मानकर भारी भूल की है। विशुद्ध ज्ञाता की शक्ति प्रज्ञा है, इंद्रिय संवेदना नहीं। प्रज्ञा के उपेक्षक कांट ने पुरोहित बनकर विशुद्ध ज्ञाता के साथ इंद्रिय संवेदना को वैवाहिक सूत्र में बांध दिया। इस अनुचित संबंध से द्वैतवाद और अज्ञेयवाद रूपी दो वर्ण संकर उत्पन्न हुए हैं। जिन्होंने न केवल अपने पिता के विशुद्ध नाम को ही कलंकित किया है किंतु उस पुनीत पुरोहित पर भी कलंक के छींटे मारे हैं जिसने इनके माता पिता को एक सूत्र में बांधने का दुस्साहस किया। इन दोषों के होने पर भी कांट की कीर्ति महनी और उनकी महत्ता व्यापक है। उनकी कोट के दार्शनिक संसार में विरले हुए हैं। त्रयोदश अध्याय समाप्त।